आज माघ कृष्ण पक्ष की प्रथमा है, 31 जनवरी सन 2010 और हमारा आँखों का शिविर यहाँ पर बरसाने में लगा है और हम सब लोग इस पवित्र क्षेत्र में इस रज में विराजमान हैं। हमारे संग में नर्तकी माता जी हैं, प्रभुपाद की शिष्या हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनके पूजित राधा श्याम सुंदर जी हैं और मेरा ये विश्वास है कि सभी आचार्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रामाणिक भक्त एकत्र होते हैं और वैष्णवों की सेवा करने का प्रयोजन रखते हैं और सहयोग के साथ में उस सेवा के प्रकल्प को सफल करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर सभी आचार्यों का आशीर्वाद और उपस्थिति प्राप्त होती है। तो आज के हमारे कथा में हम श्री वृंदावन धाम ब्रजमंडल भूमि के महात्म्य के चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा यहाँ का जो निवास है, जितने भी दिनों का, कुछ लोगों का 8 दिन का है, कुछ लोगों का 10 दिन का है, कुछ लोगों का 12 दिन का है, वो सभी कण कण में, क्षण क्षण में, मिनट मिनट में और घंटों घंटों में और दिन दिन में आपका वो वास यहाँ का सफल हो जाए। इस उद्देश्य से हम इस महात्म्य धाम का बताने का प्रयास करेंगे। वैसे हम जैसे जीव इस धाम का महात्म्य क्या बोल सकते हैं, तो जब मैं इसकी पढ़ाई कर रहा था तो उसमें एक उल्लेख आया कि श्री बरसाना क्षेत्र का जो महात्म्य है वो साक्षात श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते वर्णन, और बलराम जी जो अनंत शेष के रूप में अपने हजारों फन के माध्यम से, हजारों मुखों के माध्यम से सृष्टि के निर्माण से भगवान के लीलाओं का गुणगान करते आ रहे हैं, वो भी श्री वृंदावन धाम और बरसाना धाम का गुणगान महात्म्य पूर्ण नहीं कर सकते, तो हमारी क्या योग्यता है उसके लिए। लेकिन फिर भी अथाह सागर में से एक कण भी हम उठा पाएंगे तो भी हमारा उसमें लाभ होगा सबका, और उतनी भी हमें महात्म्य की जानकारी होगी तो भी हमारा धाम का निवास जो है वो सफल हो सकता है, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है, भगवान का महात्म्य भी अनंत है, भगवान के धाम का महात्म्य भी अनंत है। तो शास्त्र में लिखा है कि त्रैलोक्य में जो 14 भुवन एक ब्रह्मांड में भगवान ने बनाए हैं और ऐसे अनंत ब्रह्मांड इस सृष्टि में विराजमान है जो भौतिक जगत कहलाता है, उसके आगे जाकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत का भी निर्माण है जो दिव्य गणित से हम समझ सकते हैं कि वो 3/4 है, दोनों अगणित है, अमर्याद असीम है, लेकिन लौकिक दृष्टि से समझा जाए तो आध्यात्मिक जो सृजन है भगवान का, निर्माण है, वो 3/4 है और जो भौतिक सृजन है वो 1/4 है, लेकिन दोनों अनंत हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक सरसों के बोरी से 100 किलो के आप गिनो कितने सरसों के दाने हैं, तो आप गिन सकते हैं उसको, शायद पूरा कैंप खत्म हो जाएगा भी आप गिन नहीं सकते उसको। उसी तरह से भौतिक जगत भी उतना ही है और आध्यात्मिक जगत तो उससे भी 4 गुना है, 3 गुना। तो हम एक ब्रह्मांड की बात करेंगे, इस ब्रह्मांड के अंदर, अनंत ब्रह्मांडों के अंदर जो एक ब्रह्मांड है उसके अंदर 14 भुवन है। इस 14 भुवन के, ऐसे कहा गया है कि जो सारे जो निर्माण है भगवान का वो अनंत शेष अपने शीश पर धारण किए हुए हैं। ऑल द क्रिएशन इज हेल्ड बाय अनंत शेषम ऑन हिज हेड। उनके 1000 फन में एक कुमुद नाम का फन है, बीच में है वो, और उस कुमुद नाम के फन में श्री ब्रजमंडल विराजमान है जो 84 कोस की उसकी क्षेत्रफल बताया गया है। और तीनों लोकों में जितने भी लोक इसमें वर्णन किए गए हैं, जितने भी अनंत ब्रह्मांडे में जितने अनंत लोगों का वर्णन किया गया है, उसमें सबसे श्रेष्ठ है ये ब्रजमंडल धाम, क्योंकि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भगवान अपनी सखी प्रियतमा राधा रानी के साथ में यहाँ पर विलास करते हैं, रसों का विलास करते हैं, लीलाओं का विलास करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को बहुत पवित्र माना गया है। और धाम और तीर्थ में क्या अंतर होता है, धाम वो स्थिति है, वो जगह है जिसमें भगवान का स्वयं का घर है, जैसे कि अयोध्या जी हम श्री रामचंद्र जी भगवान का धाम कह सकते हैं, वैसे श्री वृंदावन धाम भगवान का निज धाम है, श्री कृष्ण का। लेकिन जब अपना निज धाम छोड़कर जब वो बाहर जाते हैं और वहाँ जाकर कुछ लीला करते हैं तो उस जगह को तीर्थ कहलाते हैं। जैसे कि अयोध्या जी से जब रामचंद्र जी निकल गए वनवास में, दंडकारण्य में गए, नासिक में गए, तो नासिक तीर्थ है और अयोध्या जी धाम है। उस तरह से श्री वृंदावन धाम है, वो धामों का भी धाम है, सब धामों का उगम स्थान श्री वृंदावन धाम है। सो त्रैलोक्य में ऐसा कहा गया कि पृथ्वीलोक श्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि पृथ्वीलोक पर भगवान की प्राप्ति करने का जो मौका है वो स्वर्ग लोकों से भी अधिक है। लोग सोचते होंगे स्वर्ग में जाना चाहिए, देवता लोग वहाँ रहते हैं, भगवान के भक्त हैं वो, भगवान उनको बहुत फेवर भी करते हैं। लेकिन स्वर्ग लोकों में भी जितनी अनुकूलता नहीं है भक्ति करने के लिए उतनी पृथ्वीलोक पर है, क्योंकि पृथ्वीलोक पर बहुत सारा दुख है और थोड़ा थोड़ा सुख है बीच बीच में। सुख जवा पाड़े दुख पर्वत आए बड़ी, हाँ पर्वत के समान दुख को भोगने के बाद में एक गेहूं का दाना होता है ना जव का, उतना सारा सुख प्राप्त होता है इस जगत में। तो इस जगत में मनुष्य देह जो है वो देवताओं के शरीर से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि देवताओं को देवताओं के धाम से डायरेक्ट भगवान के लिए, भगवान के धाम के लिए रास्ता नहीं है, उनको पृथ्वीलोक पर आना पड़ता है। मनुष्य का शरीर धारण करने के पश्चात ही यहाँ से ही भगवान के धाम की मुक्ति का मार्ग है। इसलिए पृथ्वी जो है ये 14 भुवन में श्रेष्ठ मानी गई है, और इस पृथ्वी में भारतवर्ष जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है अनेक देशों में से, क्योंकि भारतवर्ष में स्वयं भगवान अपने परम पुरुषोत्तम मूल अवस्था में, मूल रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, अलग अलग प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं इस भूमि में। और जितने भी संत हैं उसमें अधिकतर संत जो है, मैं तो कहूँगा 99.99% जितने संत हैं वो सब लोग भारत भूमि में जन्म लिए हुए हैं, और कुछ कुछ भगवान की इच्छा से फिर पश्चिम जगत में हाँ अवतार लेते हैं, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद जैसे। तो ये भूमि जो है वो भगवान के अनंत अवतारों के चरण स्पर्श से और उससे भी अधिक भगवान के प्रिय भक्तों के चरण स्पर्श से पुनीत हो गई है। इसलिए भारत भूमि को जन्म लेने के लिए भी ऐसे कहा गया कि बहुत पुण्य करने पड़ते हैं, अनेक जन्म के पुण्य के पश्चात भारत भूमि में यहाँ के वासियों के गर्भ में मनुष्य जन्म प्राप्त करने का भाग्य प्राप्त होता है। तो इस भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ जो है वो ब्रजमंडल को माना गया है, या तो उसको आप वृंदावन धाम कह सकते हैं, जो गौलोक धाम जो है भगवान का उसकी प्रतिकृति है। गौलोक धाम तो अनंत है, वो भगवान के जो वैकुंठ निर्माण है, अनंत वैकुंठ लोक ब्रह्म ज्योति में विराजमान है। लेकिन अनंत वैकुंठ लोकों में भी एक विशेष विभाग है जो आपको एकदम विशेष वैकुंठ कह सकते हैं उसको, उसमें अयोध्या जी हैं, हाँ उसके बाद में द्वारका है, उसके बाद में मथुरा है, और उसके आगे जाकर गौलोक वृंदावन है। और उसमें अंतर क्या है कि जितने भी वैकुंठ है और उसके आगे के अयोध्या जी, उसके आगे द्वारका, उसके आगे मथुरा जो है, यहाँ तक भगवान भगवान है ये जानकारी सब भक्तों को वहाँ पर होती है, ये अनुभूति सबको होती है। लेकिन जैसे ही गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ भगवान की भगवान के रूप में पहचान जो है वो समाप्त हो जाती है, भगवान स्वयं अपनी भगवत्ता को छोड़ देते हैं। तो वो जो गोलोक धाम है उसकी बहुत विशेषताएं हैं, अनंत विशेषताएं हैं। जैसे कि कहा गया है ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी कि वहाँ का हर एक वृक्ष जो है वो कल्पतरु है। कल्पतरु का मतलब जो हर एक इच्छा को पूर्ण करता है। वहाँ का रज का एक कण जो है वो चिंतामणि है, वो भी उसी प्रकार की क्वालिटी उसके अंदर है। उसके स्पर्श मात्र से ही आत्मा के अंदर भक्ति का उदय होता है, भक्ति का दीपक जलता है। वहाँ पर कोई चलता नहीं है, वहाँ का हर कदम जो है वो नृत्य है, वहाँ पर कोई बोलता नहीं है, वहाँ पर का हर वाक्य जो है वो पद्य है, कविता है, काव्य है। आप सोच सकते हैं हम सब लोग अगर कविता में बात करने लगे तो कैसे होगा, सब लोग यमक अच्छी तरह से जोड़ते हुए हाँ राग में बद्ध ऐसे अगर बातें करेंगे तो कितना मधुर और कितना अच्छा अनुभव होगा। ऐसा एक गांव है साउथ इंडिया में, हाँ अभी भी लोग संस्कृत में भाषण करते हैं, सब लोग दुकानदार सब लोग, हम जाने वाले एक दिन वहाँ पर थोड़ा दिन अनुभव करने के लिए। हाँ तो ये तो ऐसी विकृत झलकी है वहां की, लेकिन वहां का हर एक व्यक्ति भगवान के साथ एक दूसरे के साथ में काव्य में वार्तालाप करता है। और वहां पर भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ देते हैं और एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक सखा के रूप में, एक प्रियकर के रूप में, ऐसे हर एक जीव के साथ, तृण के पत्ते के साथ भी और धूल के कण के साथ भी संबंध रखते हैं। और हर एक धूलि का कण जो है वो भी वहां सजीव है, वो भी चेतन है, निर्जीव नहीं है। जैसे कि यहां पर टेबल जो है निर्जीव है, लेकिन भगवान के धाम में हर एक वस्तु जो है सचेतन है। तो उसका अनंत वर्णन कर सकते हैं, वो ब्रह्मा जी ने किया भी है, लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो वो जो वातावरण है गोलोक वृंदावन का, उसका एक हिस्सा जो है भगवान अपनी लीलाओं के लिए पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। और जब वो पृथ्वी पर प्रकट होता है भौतिक जगत में, तो वो उससे भी अधिक पावरफुल बन जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रवेश करता है वो भगवान की बड़ी अनुकंपा को प्राप्त करता है। उसमें इसमें भेद भी है, उसमें कोई राक्षस नहीं है, इसलिए भगवान का जो वीर रस जो है उसकी समाधान पूर्ति ना वहां पर नहीं होती। इसलिए वहां के भक्तों को राक्षस बन के यहां भेजते हैं, और उसमें असली रूप में जो वीर बोलते ना खूंखार रूप में वहां पर युद्ध करते हैं, तो उनकी जो है वीर रस की पूर्ति हो जाती है। वहां पर राक्षस नहीं, यहां पर राक्षस है। वहां पर भगवान का 16 वर्षीय किशोर अवस्था का स्वरूप है। वहां पर केवल हमेशा भगवान 16 वर्ष के किशोर रहते हैं, लेकिन केवल यहां पर भगवान जो है वो बाल्य रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए सभी जो भगवान के पार्षद हैं वो भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए अलग अलग रूप में अवतार लेकर भगवान का दर्शन करते हैं। यहां तक कि शिवजी भी आते हैं कैलाश छोड़कर भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो सर्वांग सुंदर है, हाँ सर ऐश्वर्य पूर्ण है, सर्व आकर्षक है, ऐसे व्यक्ति अगर बालक बन जाए तो कितना आकर्षक रहेंगे। हाँ कोई काला कलूटा बालक भी होगा ना, तो बालक होने पर वो बहुत सुंदर लगता है ना, आकर्षक लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। अगर परम आकर्षक, सर्व आकर्षक व्यक्ति परम पुरुषोत्तम अगर बालक के रूप में आएंगे तो कितने वो लुभावने होंगे, कितने आकर्षक होंगे। तो ये भी यहाँ पर फर्क है। तो इस तरह से भगवान अपनी लीलाओं का यहाँ पर विस्तार करते हैं ब्रजमंडल पे। और उस ब्रजमंडल में भी रूप गोस्वामी बताते हैं कि कैसे कैसे भगवान को जगह अधिक अधिक प्रिय है। पूरा ब्रजमंडल भगवान को प्रिय है, क्योंकि वहां पर भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, अपने भगवान अपने भक्तों के साथ में लीला भी करते हैं। लेकिन उसमें से भी जो 108 वन है, अनंत वन है, इसके अंदर कुछ 137 वनों का वर्णन भी शास्त्र में आता है, उसमें जो 108 वन है वो उनको बहुत प्रिय है। उन 108 वनों में उनको 12 वन बहुत प्रिय हैं, इसके नाम इस प्रकार से हैं। पांच वन जमुना जी के दक्षिण दिशा में है और 7 वन जमुना जी के उत्तर दिशा में है। एनीवेज उनका नाम है भद्रवन, बेलवन, भांडीरवन, लोहवन, महावन, वो जमुना जी के एक तरफ है, और फिर महा तालवन, कुमुदवन, छत्रवन, खदीरवन, काम्यवन, इस प्रकार के 7 वन जो है वो जमुना जी के इस पार है। उसमें जो 12 वनों में से वृंदावन है वो भगवान को अति प्रिय है। और आज हम जो वृंदावन कहते हैं वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो पौराणिक वृंदावन है, जो शास्त्र के अनुसार वृंदावन है, जिसका वर्णन शास्त्र में आता है, उसके अंदर काम्यवन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, जमुना जी सब आता है। तो ये वृंदावन भगवान को बहुत प्यारा है, यहाँ पर भगवान ने बहुत सारी लीला की है, खास करके रास लीला जो है, युगल जो संबंध है उनका, कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स कहते हैं उसको, प्रणय लीला जो है उनकी, वो वृंदावन ने विशेष रूप से प्रकट की है। और ये वृंदावन उनको इतना प्रिय है कि जब पृथ्वी पर अवतार लेने का समय आया तो भगवान कृष्ण जो है राधा रानी को बोलते हैं कि अभी जाने का समय आ गया है प्रिय, अभी जाना है। तो कहते हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब तक किस जगह पर गोवर्धन, जमुना जी और वृंदावन नहीं रहते हैं हम वहां नहीं जाते हैं। तो कहते हे प्रियतमे, आपके हृदय की इच्छा जानकर मैंने पहले से ही, आपको पूछने के पहले ही, श्री वृंदावन धाम को गोवर्धन और जमुना के साथ में पृथ्वी तल पर भेज दिया है। तो वो तुरंत तैयार हो जाती है। तो वृंदावन भगवान को अति प्रिय है और वृंदावन के क्षेत्र के अंदर ही वो 20 कोस का उसका वर्णन है। वैसे कि शास्त्र में और भी कहा गया कि पवित्र धाम का जो है मोज माप नहीं करना चाहिए, हाँ नापना नहीं चाहिए उसको, लेकिन फिर भी भौतिक लौकिक रूप से उसका वर्णन जो है 84 कोस का वर्णन किया, उसमें 20 कोस जो है वृंदावन है। मथुरा भी 4 कोस का माना गया है, इस जगह पर 20 कोस का वर्णन दिया है। एनीवे उस गणित में हम नहीं जाएंगे। तो उस 20 कोस के अंदर अनेक ऐसे वर्णन आए हैं कि 4 प्रकार के वन होते हैं। एक होते हैं वन, दूसरा होता है उपवन, तीसरा होता है प्रतिवन और चौथा होता है अधिवन। अधिवन थोड़ा बड़ा होता है, उपवन छोटा होता है, वन बीच में होता है। तो 12 वन बताए गए हैं जिसका मैंने आपको अभी नाम बताया, फिर 12 उपवन है, 12 प्रतिवन है, 12 अधिवन है। तो सभी अधिवनों में से श्री बरसाना सबसे श्रेष्ठ अधिवन माना गया है, नंदगांव में अधिवन माना गया है। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से जमुना जी को कंकणाकृति कहा गया है, क्योंकि श्री वृंदावन धाम को अगर आप आंख समझते हैं, नेत्र समझेंगे, तो जमुना जी काजल है, क्योंकि वो वृंदावन धाम को पूरी परिक्रमा देके आगे चलती है। उसका रंग भी बहुत गहरा है, अगर आप दूर से देखेंगे किसी ऊंचे छत पर जाकर, तो आपको आज भी नजर आएगा कि बहुत गहरा रंग का उसका पानी है। और वृंदावन नेत्र के लिए वो काजल के समान है, उसको कंकणाकारिणी की जो होता है ना कंगन, वैसे भी माना गया है। और जमुना जी के जल को कहा गया है कि परम अमृत वाहिनी, जो सूर्य की पुत्री के रूप में जन्म लेकर नदी बनकर अवतरित होती है, श्री धाम वृंदावन गोलोक वृंदावन से पृथ्वी पर अवतरित होती है, वो विशाखा जी का विस्तार है। विशाखा जी भगवान की बहुत प्रिय सखी है, और विशाखा जी का विस्तार के रूप में जमुना जी पृथ्वी पर अवतरित होती है जमुनोत्री से, और उसमें उतनी शक्ति नहीं होती है जमुनोत्री में जितनी वो वृंदावन में प्रवेश करने के बाद प्राप्त करती है। गंगा जी का भी ऐसा ही है, गंगा जी का दुनिया भर में जितना भी गंगा जी बहती है सब जगह पापों से शालन करने का वरदान दिया गया है उसमें स्नान करने के बाद, लेकिन जैसे ही वो मायापुर में प्रवेश करती है वो परम भक्ति प्रदायिनी बन जाती है। पाप का शालन करने वाली है ही, वो रहती है वैसे बसी रहती है, लेकिन उसके अंदर भगवान के धाम का स्पर्श होते ही तुरंत वो भक्ति प्रदायिनी बन जाती है। ये धाम का महत्व है, ये धाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। और एक विशेष बात समझना जरूरी है कि 4 चीजें भगवान से अभिन्न है, नाम रूप लीला और धाम। सबको याद रहेगा क्या कहा मैंने, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। और ये चारों चीजें, भगवान तो बहुत शक्तिशाली है, परम शक्तिशाली है, लेकिन ये चारों चीजें भगवान की ही होती हुए भगवान से भी अधिक शक्तिशाली होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपने सुना होगा ना, जब स्वयं रामचंद्र जी आए और अपने हाथ से पत्थर को फेंका समुद्र में तो क्या हुआ, तैर गया वो, हाँ तैर गया क्या, नहीं डूब गया वो। हनुमान जैसे भक्तों ने जब उन पर राम का नाम लिख के भेजा तो क्या हुआ, सब तैर गए। ये भगवान ने स्वयं अपनी लीला में बताया खुद के उदाहरण से कि मुझसे अधिक मेरा नाम शक्तिशाली है, तो मैं नहीं कर सकता हूं किसी को माफी, तो मेरा नाम कर सकता है। उसी तरह से भगवान का धाम भगवान से अभिन्न है, फिर भी भगवान से अधिक शक्तिशाली है। जहां तक दयामय करुणामय होने का सवाल उठता है, उसमें भगवान का धाम जो है उनसे अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए अलग अलग शास्त्रों में बताया है, भागवत में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन अलग पुराण में उसका उल्लेख ऐसा है कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान का अपराध किया, सब बालकों को छीन लिया उन्होंने, गुफा में बंद कर दिया सम्मोहन डाल के, तो जब वापस ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने भगवान से बहुत विनती की, बहुत माफी मांगी, प्रायश्चित करने का प्रयास किया। भगवान ने कहा मैं तुमको माफ नहीं कर सकता हूं, आपको इस धाम का आश्रय लेना पड़ेगा। ऐसे वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने श्री वृंदावन धाम की दंडौती परिक्रमा की। इस धाम के रज का स्पर्श करते हुए हुए उन्होंने पूरा परिक्रमा किया, तभी जाकर वो जो ग्वाल वालों का उन्होंने भगवान से वियोग का अपराध किया था, भगवान से वियोग हुआ ना उनका, दूर कर दिया उन्होंने भगवान के भक्तों को भगवान के साथ से, तो वो उस पाप से मुक्त हो गए। तो धाम का ऐसा महिमा है कि जो बाहर दुनिया भर में जो हम पाप करते हैं धाम के अंदर आने से नष्ट हो जाते हैं, और धाम के अंदर भी जो पाप करते हैं वो भी धाम के अंदर रहने से नष्ट हो जाते हैं। तो गड़बड़ क्या है फिर? गड़बड़ यह है कि धाम के अंदर आने के बाद भी हम पाप करना चालू रखते हैं, इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। श्री वृंदावन धाम का ये बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है जो आप सबको बहुत ही चेतावनी के रूप में हमेशा जागरूक रहते हुए मन में उसको क्या कहते हैं, बी अवेयर कॉन्स्टेंटली, वो ये है कि वृंदावन धाम में जो अपराध होते हैं वो हजारों गुना उसका गिनती आपके अकाउंट में जमा होता है। आप एक रुपया का अगर खर्च करेंगे तो हजार रुपये लाख रुपये खर्च करने का आपको नुकसान होगा इसके अंदर। ऐसे में एक उदाहरण दे रहा हूं, मायापुर धाम जाएंगे तो वो वहां पर सब अपराध माफ है, लेकिन किसी भी धाम में आप जाएंगे वैष्णव अपराध कहीं भी माफ नहीं है, ये ध्यान में रखना। मायापुर जाने के बाद भी आप सोचना नहीं कि यहां पर तो वैष्णव को खुले दिल से अपराध कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन वृंदावन धाम में हर चीज अगर आप गलत करते हो तो उसका हजारों गुना नुकसान हमको होगा, क्योंकि ये एक इंटेंस जगह है, बहुत तीव्र जगह है। यहां पर जो भी होता है वो तीव्र होता है। अगर आप यहां पर आ गए तो आपके जितने कर्म है वो एकदम तीव्रता के आपके ऊपर प्रभाव करेंगे, जो भी अच्छे कर्म का फल मिलेगा आपको बहुत तीव्रता से मिलेगा, एकदम ऐसा तीव्र अनुभव होगा, और जो बुरे कर्म का फल होगा वो भी तीव्रता से आप पर काम करेगा। इट्स अ वेरी इंटेंस प्लेस। चाहे आप दूध पी रहे हैं और कंडेंस मिल्क पी रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, तो फर्क है ना उसके अंदर? हाँ, वही दूध जो है इतना छोटा करके आपको दिया जाएगा, उस तरह का अनुभव यहां पर है। इसलिए यहां पर रहते हुए आपको बड़ी सावधानी से बर्ताव करना चाहिए धाम के प्रति, धाम वासियों के प्रति और अन्य भक्तों के प्रति। यहां पर बिल्कुल अपराध नहीं करना चाहिए। और संक्षेप में अपराध की व्याख्या ऐसे है, जिससे व्यक्ति का दिल दुख जाए वो काम नहीं करना चाहिए। और किसका दिल किससे दुख जाए ये हमको पता नहीं है, इसलिए बड़ी सावधानी से बर्ताव करना चाहिए। क्योंकि यहां पर अगर हम कहते ना, हिंदी में कहते हैं लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब आए हैं हृदय की शुद्धि करने के लिए, लेकिन बहुत भयंकर नुकसान करके आप लौट सकते हैं। इसलिए आपको शुरुआत में सावधान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी ये भगवान से तीव्र प्रार्थना है, हम लोग भगवान से विनती करते हैं कि आप लोग जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो सब लोग श्रीमती राधा रानी की अनंत कृपा को लेकर बंबई लौटें या और अपने धाम में लौटें जहाँ पर भी आप रहते हो। लेकिन इस प्रयास में हो सकता है कि आपने अगर कोई गलती किया तो जितना प्राप्त होना था तो दूर रह गया, लेकिन नुकसान करके आप भर जाएंगे, वही अच्छा नहीं होगा। हाँ, इतना प्रयास कर, क्योंकि आप जैसे कि मानो तलवार की धार पे चल रहे हो, इतना सावधानी से आपको चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको धाम के निवास के अंदर आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए। और सबसे अधिक अपराध कौन से इंद्रिय से होते हैं? यस, बोलो बोलो बोलो, मुंह से होते हैं, हाँ, जीवा से, बोलने से होते हैं। और प्रभुपाद जी कैसे बताते हैं, अगर जीवा को काबू में रखना है, जीवा दो काम करती है ना, एक खाती है और बोलती है, और दोनों काम बहुत भयंकर होते हैं। तार मध्य जिह्वा आती, ऐसा कहा गया है। हाँ, जिब्बेर लालसा ये इति उति धाय, सिष्णु दर परायण कृष्ण नहीं पाए। ये जिह्वा की लालसा से जीव कहाँ कहाँ भागता है, और जिह्वा को बेकाबू करने के पश्चात उसके उदर और उसका जो जनन इंद्रिय है वो भी बेकाबू हो जाता है, और संसार में अनंत काल के लिए भटकते रहता है वो, केवल जिह्वा के बेकाबू होने से। इसलिए जिह्वा को काबू में रखना है धाम में रहते हुए खास, और दुनिया भर में कहीं भी रहते हुए दो काम करने चाहिए, एक भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद समझ के लेना चाहिए, ये नहीं कि ये गुलाब जाम है, ये जलेबी है और ये पकौड़ी है। हाँ, हम बोलते हैं इसको क्या महाप्रसाद चाहिए, नहीं वो सब्जी देना मेरे को, वो गुलाब जाम देना। ये प्रसाद की भावना नहीं है, प्रसाद मतलब जो भी भगवान को अर्पण किया गया है प्रेम से, भक्तों ने बनाया है उसको प्रसाद कहते हैं। वो चाहे चावल हो या पकौड़ी हो, रोटी हो, सूखी सूखी हो, जो भी हो, अगर भगवान को अर्पण किया गया है तो वो प्रसाद है, और उसकी भावना से आप पाएंगे तो आपको उसका पूरा लाभ होगा, तब जिह्वा आपके नियंत्रण में आएगी। इसलिए भगवान के प्रसाद को आप जब पाएंगे तो ये मत समझना कि हम रसम पा रहे और हमारे कृष्ण शरण प्रभु ने मेदू वड़ा बनाया है, इडली बनाया है, ये समझ के मत पाना, इसको प्रसाद के रूप में पाना, प्रसाद समझ कर पाना। और दूसरी बात है, मुख से बिल्कुल जरूरत के बिना बात नहीं करना, जो भी सेवा के लिए योग्य है वही बात करना, और जो भगवान के विषय में है वो बात करना, और अगर दोनों नहीं करना है तो भगवान के नाम का जप करना। मुख को हमेशा भगवान के नाम के रस से पूर्ण रखना, हमेशा एक क्षण भी यहां गवाना नहीं, क्योंकि यहां पर एक क्षण के अंदर जो आप नाम लेते हो उसका हजारों गुना लाभ आपको होगा। मैं आपको ज्यादा अपराध के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि अपराध हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग ऐसे व्हाट इज इट, वी आर प्रोन टू कमिट ऑफेंसेस, हम लोग अपराध जन्य है, बहुत पतित पतनशील है, जीव जो है वो पतनशील होता है, आसानी से ऊपर चढ़ने का प्रयास नहीं होता, आसानी से नीचे जाने का प्रयास होता है। इसलिए हम आपको विनती करते हैं कि हमको जानना चाहिए कि हमको किससे बचना है और लाभ करना है तो हर क्षण के लिए हमको भगवान के नाम का जप करना है। ये धाम का यहां पर शक्ति है जो हमको प्राप्त हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है। इसलिए जिह्वा को अगर आपको यहां पर काबू में रखना है, भगवान के नाम का जप एवं कीर्तन कीजिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको कि कैसे आपको यहां पर रहना है। आप सबको जानते हैं कि बलि महाराज ने 100 यज्ञ करने का अनुष्ठान किया था, है ना, इंद्रप्रद को प्राप्त करने के लिए। त्रैलोक्य को पदाक्रांत करने के पश्चात उन्होंने सोचा कि मुझे अभी तक देवता लोग मान्यता नहीं दे रहे इंद्र के रूप में, इसलिए उन्होंने और 100 यज्ञ किए। और 100वे यज्ञ में बलि महाराज के यज्ञ में वामन देव आए और यज्ञ ने यज्ञ में उन्होंने विघ्न डाला ना, उनकी तरफ से उनका यज्ञ भंग हो गया, वो दान पूर्ण नहीं कर सके, जो मांगा उन्होंने दे नहीं सके, तो शुक्राचार्य ने उनको शाप दिया, उधर भी उनका गड़बड़ हो गया, तो बड़े परेशान हो गए वो। तो किसी और जगह पर शुक्राचार्य जी उनको बताते हैं, वर्णन किया उसका कि क्या करें अभी, मेरा तो यज्ञ जो है तो पूरा ध्वस्त हो गया। तो वर्णन करते हैं कि कोई भी यज्ञ जो होता है उसमें कई चीजें, श्लोक का उच्चारण होता है, अग्नि होती है, घी होता है, हाँ अनाज होता है, उसमें कलयुग में कहा गया है कि कोई शुद्ध है नहीं चीज, सब जगह अनाज भी जो है वो पापी लोग बनाते हैं उसको, दारू पी के, शराब पी के, मटन खा के, तो फिर वो अनाज भी दूषित है, घी भी दूषित है, जो वस्तु हम यूज कर रहे हैं सब लोग दूषित है, ब्राह्मण भी हाँ नकली छाप है सब लोग, कोई मंत्र बोलने से अग्नि उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसे कलयुग में बहुत दोष है। प्रामाणिक हृदय से करने वाले ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था जो है वो अपरिपूर्ण है। तो दानवों के जो गुरु है शुक्राचार्य, वो समझाते हैं कि जितना भी यज्ञ में त्रुटियां होती है वो नाम संकीर्तन करने से पूर्ण हो जाती है। सोच लीजिए आप, दानवों के गुरु बता रहे हैं, वो भी ज्ञानी थे ना, वो जानते हैं नाम संकीर्तन का महत्व क्या है। तो हमारा भी क्या लिखा है यहां पर, बाहर लिखा है दिव्य चक्षु यज्ञ, हम लोग भी यहां पर एक यज्ञ करने जा रहे हैं। यज्ञ में बहुत त्याग किया जाता है, भावनाओं का, श्रम का, विचारों का, समय का, आप लोग सब समय निकाल कर मुंबई से यहां पर आए हैं, समय का त्याग कर रहे हैं, अपनी शक्ति का त्याग करेंगे, शक्ति आप भोग में लगा सकते हैं वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हाँ ये सब यज्ञ जो है वो त्याग में बसा होता है। तो उसमें भी कई कमियां हो सकती हैं, आपकी सेवा में आलस्य कर सकते हो, सो सकते हो, या इच्छा नहीं हो सकती है, उदासीन्य हो सकता है, हाँ मन में कई विकल्प हो सकते हैं, बम्बई के विचार आ सकते हैं मन में आपके, कई इस यज्ञ में आपके बाधाएं आ सकती है, त्रुटि हो सकती है, दोष हो सकता है। लेकिन शुक्राचार्य के कहने के अनुसार ये आपको जानना चाहिए कि नाम संकीर्तन करने से, नाम जप करने से ये सारी त्रुटियां पूरी होकर आपका जो त्याग है, आपका यज्ञ जो है वो पूरा हो जाएगा। इसलिए आपको समय रहेगा तो आप इस पंडाल में आइए, प्रभु जी यहाँ पर बहुत मधुर कीर्तन कर रहे हैं, बहुत मनमोहक भगवान को रिझा रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठिए और अपना समय कीर्तन में लगाइए। यहाँ वहाँ की बेफिजूल बातें तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि आप धाम में बैठे हैं, बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप, ये धाम का महत्व है, इसको समझना चाहिए। और आप जितने भी दिन यहां रहेंगे इसी भावना में रहना कि मैं अपने मुंह से वही बात करूंगा जो सेवा के लिए अनुकूल हो, या तो भगवान का नाम हो या भगवान के धाम का महत्व हो, नहीं तो मैं शांत रहूंगा और भगवान का ध्यान करूंगा और अपनी सेवा में अपना मन लगाऊंगा। तो बरसाना मैं कह रहा था कि ये अधिवन में आता है, और ये क्षेत्र जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रह्मा विष्णु स्वयं कृष्ण भी इस क्षेत्र का वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा घर होता है ना, किसी किसी का घर बड़ा होता है तो आंगन भी होता है, उसके अंदर बाहर एक दीवान खाना भी होता है, उसके अंदर एक रूम होता है, फिर उसके अंदर किचन होता है, उसके अंदर फिर बेडरूम होता है, और सब प्रकार के लोग सब जगह प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ कुछ लोगों को आप दरवाजे से ही विदा करेंगे, दूध वाले को, भंगी को, हाँ अंदर लेंगे भी नहीं। कुछ ऐसे ऑफिशियल जो गेस्ट होते हैं, तो किसी काम से आते हैं बिल लेने के लिए, उनको आप हॉल में बिठाएंगे, वहीं से ही विदा कर देंगे। तो दोस्त आएंगे तो आगे जाएंगे, और कोई बहुत खास मित्र आते हैं तो उनको आप बेडरूम तक लेके जाएंगे, लेट के उनसे बात करेंगे, वो भी लेटेंगे बात करेंगे, आप भी लेट के बात करेंगे, केवल कुछ लोग वहां पर पहुंच पाते हैं, सब लोग वहां पर पहुंच पाते नहीं। उसी तरह से भगवान का ये जो वृंदावन धाम है इसमें भी कई अलग अलग विभाग है। धाम तो दिव्य है, त्रिगुण त्रिगुणातीत है, तीन गुणों के परे हैं, दिव्य है, लेकिन फिर भी उसकी जो दिव्यता है उसके अंदर अलगता है, हाँ विविधता है। जगह जगह भगवान ने गौचारण किया है, जगह जगह भगवान ने राक्षसों का वध किया है, जमुना जी के किनारे गौचारण किया है, सखा लीला किया है, लेकिन नंदगांव बरसाने में कोई राक्षस का वध नहीं किया है। ये बहुत विशेष समझने की बात है, क्योंकि ये भगवान का अंतःपुर है, हाँ इस अंदर का कक्ष है एकदम उनके धाम का, इसलिए यहां पर किसी भी राक्षस को प्रवेश नहीं दिया है, कोई आ नहीं पाया यहां पर। जब भगवान गोकुल छोड़कर नंदगांव में दोबारा आए, नंद बाबा ने तय किया कि अभी राक्षसों का बहुत आतंक हो रहा है तो हमको वापस अपने ओरिजिनल जगह पे जाना चाहिए, तो नंद बाबा और ऋषभानु महाराज राजा रानी और कृष्ण को लेकर बरसाना और नंदगांव में लौट के आए, तो कंस के राक्षस खोजते रहे, वहां पर कोई मिला नहीं उनको, तो कंस स्वयं आया खून ढूंढने के लिए, लेकिन जहां जब आया वो स्त्री बन गया, जैसे ही क्षेत्र में प्रवेश किया वो स्त्री बन गया, और मैं बताऊंगा उसकी कहानी आगे आपको। 6 महीने तक वो तड़पता रहा स्त्री के वेश में, चक्रवर्ती सम्राट कंस महाराज। तो ये श्रीजी महारानी राजा रानी का प्रताप है, एक क्षेत्र में ऐसा आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। फिर 6 महीने के बाद में उनसे कंडे लिपवाए, गोबर के हाँ गीले हाथ करके उसको सुखवाए, उसको ढोवाए, सर पे जगह पे रखवाए, अच्छी तरह से अरेंज किए, रो रो के करते थे वो रोज। हाँ गोपियां तो बड़े आनंद से खुशी से गीत गाते हुए कंडे लिपते हैं, और महाराज हमारे रोज रोते रोते कंडे लिपवा रहे हैं, लेकिन इतनी नामुश्की, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नहीं स्थिति आ गई हमारे ऊपर कि अभी कंडे लिपने का समय आ गया। 6 महीने के बाद में गिड़गिड़ाए बहुत, राधा रानी का दर्शन हुआ उनको, उन्होंने उनको वार्निंग दिया, दोबारा आओगे परमानेंट लेडी बनकर रहोगे। फिर दोबारा नहीं आए हो, तभी क्या करें, स्त्री का शरीर है तो कैसे उसको पुरुष का बनाए, तो बोले ये मेरा किशोरी कुंड है, तभी वो जावट में थी, उनका अभिमन्यु से विवाह हुआ था, जटिला कुटिला घर पे थी, ये मेरा किशोरी कुंड है, यहाँ पर मैं स्नान करती हूँ, उसको डुबकी लगाओ फिर पुरुष बनोगे फिर लौट जाना। सीधे छलांग लगाई ऐसे ही वस्त्र के साथ ही, जैसे पुरुष बने ऐसे भागे मुड़के भी देखा नहीं, बोले मुड़के देखेंगे तो मूड बदली हो गया तो वापस श्री बनना पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो भाग गए यहां से मथुरा तक, वापस लौट के नहीं आए। उसके पहले उनके सेनापति भी आए थे, हाउ बिलाओ, वो पत्थर बन के पड़े हुए हैं नंदगांव में, भगवान को स्पर्श किया वैसे पत्थर हो गए। क्यों ऐसा किया भगवान ने, क्योंकि उनको यहां पर अपने भक्तों के साथ में, सखाओं और सखियों के साथ में, माता पिता के साथ में एकदम उत्कट अंतरंग लीला करनी है, उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई वीर रस बीच में नहीं आना चाहिए, कोई वध वध करने का टाइम नहीं मिलना चाहिए यहाँ पर, इस तरह की लीला यहाँ पर है। वो लीला करने के लिए भगवान ने यहाँ पर विशेष आयोजन किया है, उस दृष्टि से ये पूरे वृंदावन में भी सबसे श्रेष्ठ जगह है। राधा कुंड और श्याम कुंड भी बहुत श्रेष्ठ जगह है, वृंदावन में उनको गोवर्धन अति प्रिय है, गोवर्धन में भी उनको अति प्रिय राधा कुंड श्याम कुंड है, वैसे ही अंतरंग जगह है भगवान की, जहाँ पर बहुत ही मधुर माधुर्य वात्सल्य सखा लीलाओं का प्रकट्य होता है। और इसमें एक विशेषता और है बरसाने धाम की, कि पूरे विश्व में जहां पर भी भगवान निज धाम में आते हैं या धाम छोड़कर तीर्थ में जाकर कुछ लीला करते हैं, सब जगह पर जहां जहां कदम रखते हैं वहां पर उनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए सभी जीव लालायित रहते हैं, देवतागण भी लालायित रहते हैं, ब्रह्मा जी भी लालायित रहते हैं, भक्तगण भी लालायित रहते हैं, उनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए बहुत तड़पते हैं, तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये धाम का रज तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर भगवान सब जगह चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, राजवस्त्र राजा के रूप में जूता पहनते हैं, यहां पर जैसे ही आते हैं चप्पल वगैरह सब छोड़ देते हैं, राजवस्त्र सब छोड़ देते हैं, वनमाला पहनते हैं, मुरली धारण करते हैं, मोरपंख धारण करते हैं, हाँ लकुटी धारण करते हैं, वो होता ना बफेलो हॉर्न बजाने का बिगुल होता है वो धारण करते हैं, नंगे पैर घूमते हैं ब्रज में, सब जगह पर यहां पर उनका चरणों का चिन्ह बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहां पर इतना प्रेम का आविर्भाव है, यहां पर इतना प्रेम प्रकट होता है यहां पर, कि हर जीव यहां से प्रेम से लिप्त है, यहां तक कि गाय पंछी तोता हर प्रकार के जीव, गधा गाय बैल भैंस तोता बंदर, सब लोग यहां पर भगवान के प्रेम में पूर्णता आवृत्त है, सींचे हुए हैं पूर्णता से। और गाय भी भगवान के ऐसे कहा कि हाँ कि गाय जो है उनकी आंखों से हमेशा आंसू भरे रहते हैं। यशोदा माता जी का वर्णन भी ऐसे आता है, उनके आंख में हमेशा ऐसे मतलब ना प्रेम से आंसू से भरे रहते हैं। इतना प्रेम भगवान के प्रति उनके मन में है, इतना उनका हृदय जो है भगवान के विचार से चेतना से संपृक्त है, सैचुरेटेड। तो ऐसी गाय जब चरती है, क्योंकि ब्रज में वो बिल्कुल निर्भय होकर चरती है, ब्रज का व्याख्या ही ये है, ब्रज वो जगह है जहां पर गाय निर्भय होकर विहार करती है, उस जगह को ब्रजभूमि कहा गया है। तो जब वो चरती है तो उनके थन जो है वो ऐसे भगवान के वात्सल्य भाव से दूध से भरे रहते हैं। और आपको जानते होंगे आपको अंदर बहुत माताएं हैं, जब कोई छोटे बालक वाली माता होती है दुग्धपान कराती है अपने बालक को, तो कभी कभी बालक की याद आते ही स्तन से दूध निकलता है। हाँ, कोई कहीं नौकरी करते हैं, 3 महीने 3 महीने के बाद में दोपहर के बालक का दूध पीने का समय हो गया तो वो स्तन से दूध निकलता है उनके काम के जगह पर। वात्सल्य है, वात्सल्य का परिणाम है वो। तो उसी तरह से कृष्ण के भाव प्रति वात्सल्य के भाव से गौएं के थनों से हमेशा दूध टपकते रहता है, जमीन तक लगते हैं वो थन और दूध भी टपकते रहता है उसके अंदर। रज भी बहुत मक्खन की तरह मुलायम होती है, उसके अंदर ये दूध टपकते रहता है। तो हमेशा ये भूमि जो है प्रेम रस से गीली रहती है और उसमें भगवान नंगे पैर चलते हैं। उनके चरणों के जो अनंत सुंदर सुंदर चिन्ह हैं, जो आप कभी पढ़ सकते हैं उसको किताब में, उसके अंदर ध्वजा है, उसके अंदर चक्र है, उसके अंदर अंकुश है, उसके अंदर मत्स्य है, उसके अंदर वेदी है, उसके अंदर महल है राधा रानी के चरणों में। ऐसे कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह अलग अलग है, राधा रानी के चरण चिन्ह अलग अलग है, दाहिने अलग है, बाएं अलग है। ऐसे सुंदर चरण कमल जो कमल के पंखुड़ियों से भी अधिक कोमल है, लाल रंग के हैं वो चरण कमल, वो नंगे पैर इस भूमि पर विहार करते हैं और सब जगह पर वो चरण चिन्ह छाए हुए हैं। और ऐसे कहा गया कि वो चरण चिन्ह जो है उनके उस पर सुनहरा प्रकाश निकलता है किनारे से। और गाय बैल ग्वाल बाल सब लोगों ने ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, वादा किया है कि हम कोई भी व्यक्ति जो है कितना भी गौचारण करेंगे लेकिन इन चरण चिन्हों पर अपना चरण नहीं रखेंगे, इनको बनाए रखेंगे। कैसे किया होगा वही जानते होंगे, हाँ वी डोंट नो। इतने लाखों करोड़ों गायें हैं, लाखों करोड़ों ग्वाल बाल हैं, इतने बंदर हैं, कितने भैंसे हैं, कितने बकरियां हैं, सब चल रहे हैं साथ में, तो कैसे वो भगवान के कृष्ण बलराम के दो दो चरण पे पैर नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये दिव्य बात है, ये हमारे समझ में मोटी अकल में नहीं आ सकता है। तो ऐसी ये भूमि है जहां पर भगवान नंगे पैर चलते हैं। लेकिन सारे भूमि में वृंदावन में सब लोग भगवान के चरणों के रज को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बरसाना वो जगह है जिनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए पूरा ब्रह्मांडों के जितने जीव हैं, अनंत ब्रह्मांडों के जितना भौतिक सृजन है भगवान का, उसके सारे जीव जो है भगवान के चरणों के रज को प्राप्त करने के लालयित है, वो भगवान वो यहां पर आकर राधा रानी के चरणों की याचना करते हैं, उनके चरणों की रज की याचना करते हैं। वो स्वयं जिनके चरणों को स्पर्श करने के लिए, धूल को प्राप्त करने के लिए सभी लोग लालयित हैं, वो स्वयं अपने वो चरण लेकर यहां पर लोटपोट होते हैं धूल में, क्योंकि इस भूमि में राधा रानी नंगे पैर चलती है। उनके सुकोमल चरण जो है, सुबह गोरी के गोरे पांव, वो चरण कमल यहां पर विराजमान है और उनके चरण कमल से यहां की भूमि जो है वो पवित्र हो गई है, पावन हो गई है। जिनके चरणों से ऐसे कहा गया, जब वो नुपुर यानी कि घुंघरू यानी कि पैंजण पहन के चलती है और जो ध्वनि निकलता है उसमें से सब वेद उत्पन्न हो गए हैं। उस ध्वनि में से जितना भी गीत है, गायन है, जितना भी स्तवन है भगवान का, स्तुति है, जितना भी शास्त्र है, जितना भी जो भी दिव्य बातें हैं जो ध्वनि के रूप में हमारे लिए श्रुति के रूप में उपलब्ध है, वो सारे राधा रानी के चरणों के ऊपर जो नुपुर लगे हुए हैं उसकी झनकार से उत्पन्न होते हैं। और जो भी जैसे कि आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा कि 5 प्रकार के रस होते हैं, है ना, दास्य होता है और शांत रस होता है, दास्य रस होता है, फिर सखा भाव होता है, साख्य रस होता है, फिर वात्सल्य रस होता है और फिर माधुर्य होता है। और उसके आगे भी 7 और रस होते हैं, बीभत्स, वीर, ऐसे अलग अलग। तो ये सारे रसों का जो उगम है वो यहां से होता है, जैसे देवी भागवत में, गौतमीय तंत्र में, बृहद नारदीय पुराण में, ऐसे कई शास्त्र हैं, 8-9 शास्त्र हैं जिसमें ये उल्लेख आता है कि जितने भी रस तत्व हैं, जितने भी रस का विकास होता है वो बरसाना से होता है, राधा रानी के माध्यम से होता है। श्री कृष्ण स्वयं भी उस रस का आस्वादन और प्राप्ति राधा रानी से करते हैं, क्योंकि राधा रानी सभी रसों का उगम है। और राधा रानी का वर्णन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सुंदर वर्णन है उनका कि वो रस प्रदायिनी है, सभी लोगों को रस देती है। अब अगर हमको रस समझ में नहीं आता है तो हमको इतना समझना चाहिए कि हमारे अंदर, हृदय के अंदर जो भी कर्ण रूप में थोड़ी थोड़ी भक्ति का उगम अभी हो रहा है, उसका उगम वो है, वो भक्ति प्रदायिनी है, सभी जीवों को वो भक्ति देती है। हमारे अंदर जो भी भक्ति वो हमारी नहीं है, उनके द्वारा दी हुई कृपा का प्रसाद है वो, इसलिए हम लोग यहां पर आते हैं उनसे भक्ति की याचना करने के लिए। जहां पर स्वयं कृष्ण आते हैं और हाथ उठा उठा कर पुकारते हैं उनको, यहां पर कोई नहीं आता है। यहां पर शिवजी आते हैं, यहां पर नारद मुनि आते हैं, यहां पर सब देवता लोग आते हैं, गंधर्व आते हैं, किन्नर आते हैं, यक्ष आते हैं, किम पुरुष आते हैं, सभी प्रकार के, पार्वती जी आती हैं, यहां पर लक्ष्मी जी आती हैं, सब देव, सभी देवताएं, सभी देवियां यहां पर आती हैं और राधा रानी को पुकारती है यहां पर। तो एक दृष्टि से ये पुकारने का स्थान है, क्योंकि स्वामिनी जो है पहाड़ पर बैठी हुई है, वो आप सबकी पुकार सुन रही है। और बंबई से, यहां से बंबई के ज्यादा यहां पुकारना आसान है, एसटीडी ओवर देयर, इट इज लोकल हियर, है ना। तो इसलिए यहां पर पुकारने का मौका गंवाना नहीं चाहिए, बेफजूल की बातें करके ये जो अनन्य साधारण जो मौका प्राप्त हुआ है वो यहां पर हमको गंवाना नहीं चाहिए। दिन रात इस भावना में, पुकार में मग्न रहना चाहिए, चाहे आप शांत हो, मुंह से मौन होगा लेकिन हृदय से पुकार जारी रहनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब हम 1986 में सबसे पहली बार परम पूज्य राधानाथ महाराज के साथ में वृंदावन में आए थे, तो हमको मथुरा में लेने को आए थे, गुरुदेव हमको पिकअप करने को मथुरा स्टेशन पे आए थे। अभी मुझे वो जगह याद है जहां पर उन्होंने हमको 22 भक्तों को रिसीव किया था, थोड़ा सा भाषण दिया था उन्होंने। उन्होंने एक वाक्य मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था कि जब भी आप मथुरा में आओगे, एक ध्यान रखना कि आप, ये जो ब्रजमंडल है ये बलराम जी के शरीर का विस्तार है, बलराम जी स्वयं अपने शरीर को विस्तार करते हैं, धाम बनाते हैं जब भगवान के आनंद के लिए, लीला का विस्तार करने के लिए। तो दंडवत करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग श्री बलराम जी के विस्तार पूर्वक जो धाम है उस पर चल रहे हैं, अपने गंदे जो पापी पैर है वो रख कर चल रहे हैं, कितना हमको मन में क्या कहते हैं उसको, संकोच होना चाहिए। हाँ, तो वो एक भाव है। और दूसरा बताया था कि यहां पर कदम रखते ही स्टेशन, मतलब भरतपुर से आगे से, थोड़ा आगे से ब्रज चालू हो जाता है, वहां से ही हृदय के सबसे अंदर के कोने में श्रीमती राधा रानी की कृपा की याचना कंटिन्यूअसली करते ही रहना चाहिए। साहब खाते रहे हो, पीते पी रहे हो, बैठ रहे हो, सेवा कर रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हृदय के अंदर के कोने में श्रीमती राधा रानी की कृपा की याचना निरंतर करते रहना चाहिए। तभी आपका धाम का जो प्रवेश और निवास जो है वो सफल हो जाएगा। नहीं तो आप धाम में शरीर से रहेंगे लेकिन धाम में नहीं रहेंगे, क्योंकि धाम वास जो है वो शरीर से नहीं होता है, धाम वास तो आत्मा का होता है। आत्म तत्व से ही हम धाम का निवास कर सकते हैं। और टिकट निकाल के हवाई जहाज का, ट्रेन का, या बस से, या कार से हम लोग यहाँ पर आ नहीं सकते, ठीक है, हमारा वहम है कि हम आए, उससे भी लाभ होगा, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा, क्योंकि धाम तो एब्सोल्यूट है ना, परम सत्य है वो, इससे संपर्क आने से परिणाम तो होना ही होना है। क्योंकि अगर कोई पापी व्यक्ति भी अगर इलेक्ट्रिक के सॉकेट में हाथ डालेगा और कोई संत भी हाथ डालेगा, दोनों को शौक लगेगा ना कि नहीं लगेगा, बच्चा हाथ डालेगा या स्त्री हाथ डालेंगी या पुरुष हाथ डालेगा या संत डालेगा, सबको शौक लगने वाला है। उस तरह से धाम परम सत्य है, उसका सबका परिणाम तो होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आत्म रूप से इस धाम का पूरा आपको लाभ लेना है दिव्य रूप से, तो आपको इस तरह से प्रार्थना करते हुए यहां रहना है और दास्य भाव में रहना है, सेवा के भाव में रहना है। बिना सेवा भाव के यहां पर श्री जी किसको आत्म रूप से धाम में प्रवेश देती नहीं है। और अगर आप शरीर रूप से यहां पर आ गए हैं, इसका मतलब प्राथमिक रूप से हम सब पर उनकी कृपा है, लेकिन प्राथमिक रूप पर आप एंड मत कर देना, और बाकी बहुत स्तर हैं। हाँ, मन का स्तर है, बुद्धि का स्तर है, बाद में आत्मा का स्तर है, बीच में एक बहुत गड़बड़ स्तर है, अहम का स्तर। हाँ, उसको लांग कर हमको भगवान अपने आत्मा के स्तर पर आना चाहिए और निरंतर याचना करनी चाहिए। हो सके तो फूट फूट कर रोकर यात्रा करनी चाहिए, मैकेनिकली नहीं, हृदय से पुकार पुकार कर, करुणा से एकदम कहते दीन बंद कर श्रीमती राधा रानी की याचना करनी चाहिए, क्योंकि ये उनका धाम है। स्वयं जो परम पुरुषोत्तम सभी अखिल ब्रह्मांड नायक सृष्टि के नायक जो हैं श्री कृष्ण भगवान, वो भी आकर यहां पर पुकारते हैं, उनकी कृपा को चाहते हैं, और नहीं करती कृपा, गुस्सा हो जाती है तो फिर वो लोटपोट हो जाते हैं जमीन पर, ही रोल्स इन द डस्ट ऑफ दिस प्लेस। एक ही भावना से कि श्री जी की जो कृपा कटाक्ष है वो हम पर पड़े। कई दिलाए हम आगे बताएंगे आपको, संक्षेप में कहने का तात्पर्य यह है कि जो अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान है वो भी यहां पर आकर पुकारते हैं, तो हमको तो पुकारना ही चाहिए ना, हमको तो अति तीव्रता से दीन होकर अपने आप को गिल्टी दोषी मानकर उसी भावना से यहां पर निरंतर पुकारते रहना चाहिए। और भाग्य है आपका कि आपका भी एक दिन तो यहां बीत गया समझो, लेकिन आगे का हर क्षण आप इस प्रयास में रह सकते हो। सुबह उठते ही, रात को सोते वक्त भी आप प्रार्थना करके सोइए कि रात में भी प्रार्थना बनी रहे, चलती रहे। हाँ, धाम का दिव्य प्रभाव है, धाम एब्सोल्यूट है। यहां तक कि जो पापी लोग हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो मांस खाते हैं, जो गलत करते हैं, वैष्णव अपराध भी करते हैं, उन पर भी धाम का असर पॉजिटिव होता है, लेकिन वो प्रकट नहीं होता है। भक्तों के ऊपर उसको धाम का असर जो है प्रभावित प्रकट हो जाता है। इसलिए हमको इस कैटेगरी में आना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट तो है ही ना, फिर क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपना काम करते रहेंगे, परिणाम होता रहेगा। नहीं सर, हम वो बिजनेस हमको करना चाहिए। जैसे कि बिजनेसमैन जो होता है ना, वो सोचता है हमेशा कि मैं एक रुपये डालूंगा ना तो 10 रुपये या 100 रुपये 1000 रुपये कैसे बनाऊंगा उसके, वो सोचते रहते हैं। वो 1 रुपये का 1 रुपये मिलेगा तो संतुष्ट रहता है वो, अरे मैंने 1 रुपया का लगाया मैंने और 1.5 रुपया मैंने बनाया उसका, 50 पैसे मैंने कमाए, उसको संतुष्ट रहता नहीं वो। वो अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कैसा लाभ मिलेगा उसको, वो सोचता है। हाँ, हर एक बिजनेसमैन की मेंटेलिटी ऐसी होती है। तो हमको स्पिरिचुअल बिजनेसमैन बनना चाहिए, दिव्य व्यापारी बनना चाहिए, कि जो भी समय हमको मिला है उसका अधिक से अधिक, अधिक से अधिक लाभ आध्यात्मिक स्तर पर कैसे प्राप्त हो जाए, वो अगर सोचेंगे तो हम यशस्वी बिजनेसमैन हैं। नहीं तो भाई जो भी है उसको कहते हैं अल्प संतुष्ट। हाँ, अरे जो भी मिला चलो ठीक है यार, चलो ले जाएंगे, उसमें क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं मिल सकता है, इतना समय प्राप्त है, इतने क्षण प्राप्त है, इतने मिनट प्राप्त है, इतने घंटे प्राप्त है, इतने दिन प्राप्त है, क्यों नहीं मिलना चाहिए, मिल सकता है। हम लोग आलस्य करेंगे तो नहीं मिलेगा, उत्साही रहेंगे, जागरूक रहेंगे आत्मा के स्तर पर तो लाभ होगा हमको, क्यों नहीं होगा, क्योंकि राधा रानी यहां पर देने के लिए बैठी है, याद रखना इस बात को, सुनने के लिए बैठी है वो। आप पुकारो तो सही, आपको उनकी कृपा का अनुभव होगा। श्रद्धा से उनको पुकारो, प्रेम से पुकारो, मन से भावना से पुकारो, जरूर उनकी उपस्थिति का हृदय में आपको अनुभव होगा, और उनकी कृपा से यहां का जो जल है वो सभी रसों का सहार है। ऐसे मत समझना कि आप RO प्लांट का जल पी रहे हैं या ठंडा है या गर्म है या कुएं का है, जरा भारी है, थोड़ा हैवी लगता है। हाँ, ये सब होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो जल है वो सभी रसों का सहार है, यहाँ का जो अन्न है उनकी कृपा का प्रसाद है, यहाँ की जो हवा है मानो श्री जी और श्री कृष्ण भगवान आपको आलिंगन दे रहे हैं, यहाँ का पत्ता पत्ता राधा रानी को पुकारता है, ये बहुत दिव्य धाम है। ये हमको समझ में नहीं आता कि हमारी चेतना जो है वो चाहे मराठी में कहते हैं बोथट, यानी कि ब्लंट है बहुत, हमारी चेतना शार्प नहीं है, महीन नहीं है, इसलिए हमको वो अनुभव नहीं होता है। लेकिन ये अनुभव हो सकता है, केवल थोड़े प्रयास की आवश्यकता है, थोड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जरूर प्राप्त होगा यहाँ पर। और जो सबसे दीन भाव में रहेगा उसको सबसे अधिक लाभ होगा इसका, जो सब अहम में रहेगा, गुस्से में रहेगा तो उसको लाभ नहीं होगा इसका, जो दीन भाव में रहेगा उसको सबसे अधिक लाभ होगा। तो सबसे अधिक दीन होगा, दासों का दास होगा, उस पर सबसे अधिक कृपा होगी, क्योंकि वही देखते हैं वो। तृणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि, दूसरों को आदर देना, जो हमारे साथ सेवा करने आए हैं उनका आदर देना, उनको आदर देना, अपने लिए आदर की अपेक्षा नहीं करना, फेवर की अपेक्षा नहीं करना, और कुछ असुविधा हुई तो सहन करना उसको, और नम्र बनकर सेवा करना, दासों का दास बनते हुए जो बताया गया है वो करना पूर्णता से जैसे बताया गया है, और जो हमारा विग्रह है ब्रजवासी उनको नेत्रदान देकर संतुष्ट करना, नेत्रदान देने की प्रक्रिया में असंतुष्ट नहीं करना, उनकी संतुष्टि ही हमारा सर्टिफिकेट है। हमारे गुरुदेव और यहाँ के संत लोग कहते हैं कि जब आपकी सेवा से संतुष्ट होकर जब ब्रजवासी आपके ऊपर स्मित हास्य करेंगे, आपको देखकर प्रेम से हंसेंगे, तो ये समझ लेना कि राधा और कृष्ण आपको देख के हंस रहे हैं। हाँ, तो ये आपका क्राइटेरिया है कि आपको क्या प्राप्त करना है। अरे यहाँ के लोग तो इतने इतने प्रेमी हैं, हाँ हमको बहुत कुछ सीखना है उनसे। एक तो उनका है ऋणी भाव, इतना ऋणी भाव है, आप एक कुछ करोगे आप उनके लिए तो आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे, आपको भी अजीर्ण हो जाएगा उसका इतना आशीर्वाद तो एक साइड प्रमेय समय पे कभी हमने अनुभव नहीं किया था, वो ज्यादा हो रहा है ऐसा लगेगा आपको। तो बम्बई में कौन आशीर्वाद देता है, सब लोग गाली बकते हैं जहां भी जाओ, स्टेशन पे जाओ, रेलवे पे जाओ, बस में जाओ, टिकट विंडो पे जाओ, किधर भी जाओ, सब लोग गाली बकने में एक्सपर्ट रहते हैं। हाँ, सब गाली के फूल बौछार होते हैं हमारे ऊपर यहाँ पर आशीर्वाद है, प्रेम है, मीठी मीठी बातें हैं। ब्रजवासी इतने ऋणी होते हैं, एक थोड़ा सा सेवा करेंगे तो आपको याद रखेंगे जीवन भर। हमारे कैंप में अभी पिछले कैंप के लोग भी आते हैं, अरे वो कहाँ थे प्रभु जी, वो लास्ट टाइम हमने हमारा ऑपरेशन करवाया था वो उनको मिलने आए, वो छाछ लेके घर से आए हैं, कुछ रेबड़ी लेके आए हैं। हाँ, याद रखे है ना डॉक्टर सर, आपको अनुभव है ना, ढूंढ ढूंढ के आते हैं नाम पुकार के, ये उनसे सीखना है हमको। एक काम करेंगे उनके लिए, जन्म भर याद रखते हैं और प्रार्थना करते रहेंगे, आपके लिए आशीर्वाद देते रहेंगे, दुलारेंगे आपको, चुम्मा देंगे, आलिंगन देंगे प्रेम से एकदम। लोगों को हमको सीखना जरूरी है। तो वो व्यक्ति जो है यहाँ का ब्रजवासी, वो राधा रानी को अति प्रिय है, इसलिए उनको वो कभी कभी गरीब रखते हैं, कभी कभी अशिक्षित रखते हैं, कभी कभी ऐसे रखते हैं जैसे कि उनको गर्व ना हो किसी चीज का, क्योंकि गर्व जो है वो राधा रानी को पसंद नहीं है, भगवान को पसंद नहीं। इसलिए अपने प्रिय भक्तों को किसी भी तरह से अहम नहीं होना चाहिए, इसलिए वो उनको ऐसी अवस्था में रखते हैं कि अहम उत्पन्न होगा ही नहीं उनके अंदर, इसलिए बड़े भोले भाले, सीधे साधे, गरीब दीन अवस्था में रहते हैं, मन के भी और शरीर के भी, क्योंकि भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जिसमें अहम पैदा नहीं होता है उसको श्री जी की कृपा माननी चाहिए, ऐसे कहा गया है। अगर किसी के पास धन है, विद्या है, सौंदर्य है, शक्ति है, बल है, सब कुछ इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, इतना होने पर भी अगर वो दीन है तो उसको चैतन्य महाप्रभु और श्री जी की कृपा ही माननी चाहिए, ऐसे संत लोग कहते हैं। तो हमको भी सोचना है कि हम लोग यहाँ पर कैसे आए, ये कैप पहन करने हैं कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं फलाना हूँ, मैं व्यवस्थापक हूँ और मैं बम्बई में बहुत रिच हूँ और मेरा बिजनेस है, ये सब टोपी जो है ना वो छोड़ के आना आप। हाँ, कोई टोपी वहाँ पर लेके मत आना, दूसरे ढंग से कहा जाए तो जो रजोगुण है ना बम्बई का वो सब छोड़ के आना वहाँ पर, रजोगुण को यहाँ पर दिव्यता में आके मिक्स मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि खीर में अगर धूल गिर जाए तो कैसे होगा, खीर तो खीर है लेकिन खा नहीं सकते उसको धूल गिरने के बाद, है ना, कितना अलग करेंगे उसको, नहीं कर सकते अलग। तो अगर हम यहाँ पर अपने मन के अलग अलग विकल्पों को लेके आएंगे तो वो ऐसे खीर में धूल की तरह है, हमको खीर खानी है भगवान की सेवा की इसलिए आपको मैं विनती करता हूँ, ये सब जो है ना ये चेतना का खेल है, इसको ठीक से रखना चाहिए, ताकि अगर चेतना सही जगह पे होगी, एकदम फाइन ट्यूनिंग किया होगा उसका, तो बराबर ध्वनि जो मैसेज वहां का है वो आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। यहाँ पर रेडियो का कांटा जो है वो अगर सही जगह नहीं है तो ट्री ट्रू ट्रा ट्रू चलते रहेगा उसका, लेकिन कांटा सही जगह पे आएगा तो पूरा आवाज आपको बढ़िया ढंग से आएगा, एकदम क्लियर सीरियोफोनिक तो वो जो भगवान की आवाज है, भगवान का संदेश की जो आवाज है हमारे लिए, आदेश की आवाज है, वो हम सुनने का प्रयास करेंगे अपनी चेतना को सही रखते हुए। तो ये बरसाना जो धाम है, ये भगवान की जो राधा रानी है ये महाभाव प्राप्त कर चुकी है। महाभाव जो है वो केवल तीन व्यक्ति लोगों के पास में है, एक है राधा, एक है कृष्ण और एक है उनका संगम चैतन्य महाप्रभु, इसके अलावा कोई किसी व्यक्ति के पास महाभाव नहीं है। और महाभाव किस चीज से बनता है, महाभाव बनता है रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव से महाभाव बनता है, और ये केवल इनके पास में है, और सभी लोगों के पास जो भी इसका अंश पहुंचता है वो उनकी तरफ से पहुंचता है। राधा रानी भगवान की अलादनी शक्ति है, और भगवान की तीन शक्ति आप जानते हैं, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति जो हम हैं, और अंतरंगा शक्ति। और अंतरंगा शक्ति तीन प्रकार की होती है, संदिनी, संवित और अलादिनी। ये तीनों राधा रानी का ही क्या कहते हैं, उनका ही ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी उसमें अलादिनी जो भाग है वो राधा रानी का विशेष भाग है। और अलादिनी शक्ति का भगवान राधा रानी का जो स्वरूप है उसका सार जो है वो प्रेम है, एसेंस ऑफ अलादिनी शक्ति इज लव, और वो प्रेम जो है वो पहले कृष्ण के प्रति और बाकी सभी हम जैसे जीवों के प्रति जो है प्रकट होते रहते हैं। ये हमको समझना जरूरी है, वो हम सब पर प्रेम करती है। वो त्रिलोक शोक हारिणी है, हाँ उधर राधा कृपा कटाक्ष में लिखा है, सभीयों का शोक वो हरण करती है, लेकिन केवल शोक हरण नहीं करती है, प्रेम देती है, करुणा देती है, कृपा देती है, इसी के लिए यहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ पर जो भगवान रास क्रीड़ा करते हैं उसकी अधिष्ठात्री यानी मिस्ट्रेस उसकी प्रमुख जो है वो राधा रानी है, उन्हीं की तरफ से रास का भाव का विकास होता है। और कृपा जो है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपा का अधिष्ठान भी उनके पास में है। बोलते ना होलसेल कॉन्ट्रैक्ट पेटेंट जो है पूरे ब्रह्मांड में पूरे सृजन में भगवान के आध्यात्मिक और भौतिक सृजन में सब जगह पर कृपा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो केवल राधा रानी के पास है। बाकी जो भी कृपा हमको दिखाई पड़ती है वो उनके द्वारा प्राप्त की गई है, जो गुरु महाराज के पास है, जो देवताओं के पास है, जो भगवान के अवतारों के पास है, नरसिंह भगवान के पास है, वामन देव के पास है, जब वो जो भी कृपा आपको दिखती है वो सब राधा रानी की ओर से प्राप्त की गई कृपा है जो हम तक पहुंचती है अलग अलग माध्यमों से। और ऐसे कहा गया है कि वो श्री कृष्ण की परिपूरिका है, मतलब क्या है, शी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनैलिटी श्री कृष्णस पर्सनैलिटी। श्री कृष्ण भगवान की जो व्यक्तित्व है वो राधा रानी के बिना अधूरा है, श्री कृष्ण भगवान की जो पूजा है वो राधा रानी की पूजा के बिना अधूरी है, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को परिपूर्ण करने वाली श्रीमती राधा रानी। और थोड़ा सा मजेदार वर्णन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवी भागवत में ऐसा लिखा है कि जो महाविष्णु है ना, महाविष्णु जो भगवान के बड़े विस्तार हैं, कृष्ण भगवान, बलराम जी, फिर संकर्षण, फिर चतुर्व्यूह, फिर नारायण, फिर उसके बाद महाविष्णु का अवतार होता है। ऐसे कहा है कि महाविष्णु का जो भगवान का स्वरूप है वो राधा रानी के द्वारा उत्पन्न किया गया है, और पूरा सृजन जो है महाविष्णु के रोम रोम में ब्रह्मांड समाये हुए हैं, है ना, रोम रोम से ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं और फिर विकास होकर उसका ब्रह्मांड के रूप में हम उसको दर्शन करते हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के अंदर जितने भी जीव हैं उनका निर्माण वो करते हैं, गर्भोदकशायी विष्णु के माध्यम से, बाद में शिरोदकशायी विदुषी के माध्यम से, बाद में ब्रह्मा जी के माध्यम से सब निर्माण करते हैं, फिर उसके अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं और हम सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, है ना। ये जो महाविष्णु है इनकी जननी राधा रानी है। और देवी भागवत में भी वर्णन आता है कि अगर रसों का सागर, अगर हम समझेंगे रस एक सागर की तरह है, उसका मंथन किया जाए तो जो प्रेम रूपी नवनीत निकलता है वो श्रीमती राधा रानी है। और रा शब्द के उच्चारण करने से राधा जब हम पुकारते हैं तो कई दो प्रकार के परिणाम होते हैं, दो टाइप के दो प्रकार के परिणाम होते हैं। एक परिणाम ऐसा है कि रा शब्द उच्चारण करते ही हम सब लोग भव रोग से मुक्त हो जाते हैं। र और आ दो शब्द है, उसके अंदर भव रोग, गर्भवास, कर्म का फल, अच्छा कर्म का फल, बुरा कर्म का फल, माता के गर्भ का निवास, ये सब नष्ट हो जाता है रा शब्द का उच्चारण करते ही, र और आ करते ही, और धा उच्चारण करते ही प्रेम प्राप्ति हो जाती है। और दूसरे तरीका का जो परिणाम है वो ये है कि रा शब्द उच्चारण करते ही माधव जो कृष्ण भगवान है वैसे क्या कहते हैं उसको, स्पीथो, स्पीत मतलब ऐसा संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ यह है कि वो भाव विभोर हो जाते हैं। क्या कहा गया है, रा शब्द उच्चारण देव स्मितो भवति माधव, मतलब माधव जो हमारे भगवान है लक्ष्मीपति राधानाथ भगवान जो है वो भाव विभोर हो जाते हैं, विवल हो जाते हैं भाव से। और धा उच्चारण करते क्या होता है, धा शब्द उच्चारणात पश्चात धावत एव ससंभ्रम, वो राधा का नाम उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे पागल जैसे भागते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि राधा का नाम हमारे महामंत्र में भी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें जो हरे है वो राधा रानी का संबोधन है, ये मत समझना कि गौड़िया मंत्र में राधा रानी का नाम किधर है, नहीं है? हरे जो है वो राधा रानी का नाम है, वो कृष्ण को पुकारने के पहले हम राधा रानी को पुकारते हैं। शक्ति जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, लादिनी शक्ति है, प्रेम स्वरूप है, उनको पहले पुकारते हैं, क्योंकि उनको पुकारते ही हमारे जो इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान हैं उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता है। वो सोचते हैं कौन मेरे प्रियतमा राधा रानी को पुकार रहे हैं, फिर आपकी ओर देखते हैं, आपकी ओर निहारेंगे वो, और कृपा करेंगे आपके ऊपर, हम सबके ऊपर। इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो आम तौर पर आखिरी दो हरे हरे जो है खा लेते हैं, कई बार होता है, कभी कभी बीच बीच के हरे खा लेते हैं, हो सकता है दो कृष्ण में से एक कृष्ण भी खा लेते होंगे। तो खाने का है तो प्रसाद खा सकते हैं। हर एक शब्द जो है हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अक्षरों की योजना ऐसी की गई है कि इसमें हमारा सारा कल्याण इसमें समाविष्ट किया गया है, सारे प्रकार के रस इसमें समाविष्ट किए गए हैं। इसमें वियोग भी है, इसमें संगम भी है, इसमें प्रेम है, इसमें सेवा है, हर प्रकार का रस जो है जो हमारे लिए आवश्यक है वो इस हरे कृष्ण महामंत्र में समाविष्ट किया गया है। इसके ये बहुत दिव्य योजना है, दिव्य प्रोडक्शन है भगवान का। गौलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो गौलोक का सार है वो प्रेम है, धन जो परम धन है गौलोक का वो हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में स्वयं राधा कृष्ण एकत्र होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमको दिया गया है। इसको महामंत्र कहा गया है। मन त्रायति इत्री मंत्र, जो मन को एंग्जाइटी से मुक्त कर देता है उसको मंत्र कहते हैं। हाँ, और ये महामंत्र है, ये सारे मन के विकारों को मुक्त करने वाला महाशक्ति है, क्योंकि इसमें राधा रानी का नाम समाविष्ट है और जिसको पुकारने से कृष्ण का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता है। इसलिए आप जब कभी भगवान के मंत्र का जप करोगे, याद रखना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकदम ठीक से स्पष्ट रूप से उच्चारण करना और याचना करना राधा रानी की कि आपकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ी रहे। बरसाना धाम जो है वो चार चीजों से, यहाँ पर उसका थोड़ा सा टाइम लेंगे थोड़ा आज का, क्योंकि आज थोड़ा फ्री है आप लोग, है ना, कल से बिजी हो जाएंगे, इतना टाइम नहीं लेंगे कल से। चार चीजें यहाँ पर विराजमान है, वो है एक है खोर, दूसरा है खिरक, चौथा है गिरी और पांचवा है गहवर। ये खोर यानी कि सांकरी खोर, जहां पर दो पर्वत मिलते हैं, बीच में जगह होती है, वहां से गोपियां भगवान गुजरते हैं, वो सांकरी खोर है, बहुत पवित्र स्थान है, बताएंगे उसकी कहानी आगे। और खिरक यानी कि यहाँ पर चार सरोवर हैं, एक कीर्ति कुंड है, एक तिलक कुंड है, एक बिहार कुंड है, एक धोनी कुंड है, एक भानु कुंड है, ऐसे चार तरफ चार दिशा में चार मेन कुंड है, बाकी भी और भी कुंड है। गिरी यानी कि यहाँ पर पर्वतमय स्थान है ये, इसके कई नाम शांडिल्य मुनि जो है वो अपने वर्णन में प्रधान क्षेत्र का वर्णन करते हुए इस जगह का नाम लेते हैं, कई नाम है इसका, नाम है एक नाम है बृहत सानु, वर सानु, वृषभानुपुर, वृषभानुगृह, ऐसे कई, जयदेव गोस्वामी उसको वृषभानुगृह कहते हैं और चांडिली मुनि कहते हैं बृहत सानु। सानु का मतलब क्या है, चोटियां, पहाड़ की चोटियां, और वर का मतलब है बहुत सुंदर, जिस जगह पर बहुत सुंदर पर्वत की चोटियां हैं उस स्थान को बरसाना कहा गया है। और बरसाना ये बृहत सानु वर सानु ये शब्द का अपभ्रंश है। और यहाँ के पर्वतों का वर्णन ऐसा किया गया है कि आप अगर केदारनाथ जाओगे बद्रीनाथ जाओगे तो आपको बहुत किलोमीटर चढ़ना पड़ेगा, ऐसे 45 डिग्रीज के एंगल में पर्वत होते हैं, वो चढ़ना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है, हवा नहीं रहती है, कष्ट होता है चढ़ने में, लेकिन यहाँ की चोटियाँ छोटी छोटी भी हैं, चढ़ने में बहुत आसान भी है और बहुत आनंद प्रदान करने वाली है, कोई कष्ट नहीं है, थोड़ा सा चढ़ेंगे 350 सीढ़ी चढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे पहाड़ की चोटी पर। तो वैसे वर्णन किया गया इसका। और तो गिरी यानी कि ब्रह्मा जी, संक्षेप में कहूंगा कहानी, सत्ययुग की शुरुआत में जैसे हम जानते हैं ना कि ब्रह्मा जी तो सब ज्ञानी हैं, सब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कौन से युग में कौन सा अवतार होगा, सब जानते हैं वो, तो वो जानते थे कि कलयुग द्वापर के अंत में स्वयं कृष्ण आएंगे। हाँ, मतलब 1000 कल्प के 999 कल्प होने के पश्चात 1000वां कल्प जब आएगा तो उस कल्प में कृष्ण भगवान आएंगे द्वापर के अंत में, वो जानते थे, इसलिए वो सत्ययुग की शुरुआत में तपस्या करने बैठ गए। 60,000 साल तपस्या किया उन्होंने गोपियों के चरण रज प्राप्त करने के लिए, उनका संग प्राप्त करने, उनका महाप्रसाद प्राप्त करने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। कितना साल तपस्या किया, 60,000 साल तपस्या किया। हम लोग तो सुबह संडे से स्नान भी नहीं कर सकते बसाने में। हाँ, उन्होंने 60,000 साल तप किया, और वो तप का क्या स्वरूप होता था, सूखे पत्ते खाना, कभी कभार जल पीना, ठंडे जल में बर्फ में स्नान करना, निरंतर भगवान का ध्यान करना, ऐसे तपस्या हुआ करती थी। फिर सतयुग का अंत हुआ, सतयुग के अंत में 60,000 साल फिर तपस्या किया उन्होंने, मतलब कितना हो गया 120,000 साल तपस्या किया उन्होंने, तब जाकर कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया कि क्या चाहते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपके भक्तों का चरण रज चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जाओ वृंदावन में जाओ, ब्रजमंडल में जाओ। तो ब्रजमंडल तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर कई वन है, कहां जाएं? तो वो कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं वृषभानुपुर में जाओ और वहां पर जाकर पर्वत बनो, और वहां पर्वत बनने के पश्चात आपके ऊपर मम क्रीड़ां करिष्यसि, मैं वहां पर क्रीड़ा करूंगा मेरे ग्वाल बालों के साथ, गऊओं के साथ और गोपियों के साथ, और उसका दर्शन आप करते रहना। तब जाकर ब्रह्मा जी यहां पर आए हैं और पर्वत बने हैं, इसलिए यहां पर चतुर्मुखी पर्वत है, उसको ब्रह्माचल ब्रह्मगिरी कहते हैं। ऐसे भी एक वर्णन आता है कल्पभेद के रूप में कि विष्णु भी यहां पर पर्वत के रूप में आते हैं। साकरी कोर जो है कहा कि विष्णु का पर्वत जो है और ब्रह्मा का पर्वत जो जब मिलते हैं तो साकरी कोर निर्माण होता है। और ये वृंदावन धाम जो है इतना महत्वपूर्ण है, इसमें तीनों प्रमुख जो देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों यहां पर पर्वत के रूप में विराजमान है। ब्रह्मा जी यहां पर है और एक हिस्सा विष्णु का भी है, और स्वयं विष्णु जो है गोवर्धन के रूप में यहां विराजमान है, और नंदगांव में शिवजी भगवान जो है शंकर भगवान पर्वत बने हुए नंदीश्वर, जिसमें कृष्ण बलराम रहते हैं, नंद बाबा का भवन है वहां पर, यहां पर विष्णु बाबा का महल है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण जगह है आप समझ सकते हैं। तो और चौथी बात है गहवर, यानी कि गहवर बन। अलग अलग पुराण में इसका वर्णन ऐसे आता है कि ये गहवर बन जो है, इसका नाम है उसका गहवर, मतलब हाउ टू से ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ इमोशन, जब हम भाव विभोर हो जाते हैं ना उसको गहवर कहते हैं, मराठी में कहते हैं ना भावनाओं से गहवर झाला, मतलब जब वो भावना से एकदम टूट जाते हैं, आंसू आंखों से आंसू आते हैं प्रेम के, उस स्थिति को गहवर कहते हैं। और वन का नाम गहवर है, और शास्त्र में वर्णन से आता है कि राधा रानी ने अपने हाथों से श्री कृष्ण भगवान के आनंद के लिए और लीलाओं का विस्तार करने के लिए इस गहवर वन को बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। हर एक पौधा हर एक लता पता हर एक वेली अपने हाथ से लगाइए, हर एक वृक्ष अपने हाथ से लगाया है और उसको विकास किया है अपने निर्देश में और निरीक्षण के अंदर। वो गहवर वन जो है पूरे बरसाने का जो है वो हार्ट है, क्योंकि वहां पर अति अति अंतरंग लीला जो है उसका प्रकट्य भगवान करते हैं, उसमें गहवर कुंड है। ऐसे कहा गया कि ब्रह्मा आदि जो देवताएं हैं उनके लिए भी बहुत कल्याणकारी गहवर कुंड जो है वहां विराजमान है, उसका नाम राधा सरोवर भी है। इस पे जल में स्नान करने से कई जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और हृदय में भक्ति और प्रेम का विकास होता है। तो इस तरह से आगे का वर्णन कल करेंगे, क्योंकि काफी वर्णन बाकी है, तो अभी आपका जल्दी जल्दी में बताकर आपका मजा नहीं बिगाड़ेंगे, कोई बात नहीं। तो संक्षेप में कहा जाए तो बरसाना धाम बहुत पवित्र है, अति अति उत्कट भावनाओं का विकास यहाँ पर होता है, अति उत्कट लीलाओं का विकास और प्रकट्य यहाँ पर होता है। हम सब लोग बिल्कुल योग्यता ना होते हुए भी हमको यहाँ पर प्रवेश मिला है, अभी शरीर से मिला है, बहुत लोगों को आत्मा मन से भावना से मिला है। तो हम आपको विनती करेंगे कि अपनी भावना को चेतना को बनाए रखिए, जैसे होता है ना कि मन का घोड़ा होता है ना, वो यहाँ वहाँ भागते रहता है हमेशा, उसको पकड़ के रखिए, अपने कंट्रोल में रखिए और भगवान के चरणों में राधा रानी की कृपा याचना में रखिए, तब जाकर बरसाना की जो महिमा है जो ग्लोरी है वो आपके अंदर प्रकट होगी, उसका अनुभव आप कर सकते हैं। और जीवन में क्या प्राप्ति है, हाँ अगर मनुष्य जीवन में जन्म लेने के पश्चात अगर हमको मन में राधा और कृष्ण के प्रति रति नहीं है तो हमारा जीवन पशु से भी घिरा हुआ है, क्या लाभ है। जीवंत शव समान, जीवंत तो होते हुए भी हम मुर्दे की तरह घूमते हैं हम लोग, अगर हमारे मन में कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, व्यर्थ है वो जीवन, उसको त्याग देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अगर हमको अनुभूति हो रही है तो हमें इसी जीवन में जितना भी समय हमारे जीवन काल में हमको ब्रज में मिल रहा है, हाँ कई प्रकार के ब्रजवासी होते हैं, जो जन्म लेते हैं वो भी ब्रजवासी है, जो बाहर आके परमानेंट यहाँ निवास करते हैं वो भी ब्रजवासी है, जो कुछ समय के लिए रहते हैं वो भी कुछ समय के लिए ब्रजवासी है। तो ब्रजवास अलग अलग प्रकार का होता है, और एक चौथा ब्रजवास होता है, आप दुनिया में कहीं भी रहो तो ब्रज की भावना में रहेंगे, वो एक चौथे प्रकार का दिव्य ब्रजवास है। लेकिन वो दिव्य ब्रजवास आप तब कर सकते हैं जब आप यहां पर रहेंगे, और वो काल में आप अगर संपृक्त रहेंगे सैचुरेटेड रहेंगे कृष्ण भावना से, तो आप वहां जाकर वापस ब्रज की याद कर सकते हैं, और बाहर रहकर में ब्रज की भावना में रह सकते हैं। वहां रहकर अगर ब्रिज की ओर भी हम दंडवत करेंगे तो भी यहां पर स्वीकार किया जाता है, समझ लेना आप। अगर आप गल्फ कंट्री में हो, सिंगापुर में हो, इंग्लैंड में हो, अगर ब्रज की दिशा में दंडवत करते हैं तो आपका दंडवत स्वीकार किया जाएगा। अगर आप ऐसे कहा गया है एक पुराण में कि अगर आप समझो सोच रहे हैं यूके में बैठ करके मुझे जाना है वृंदावन में, बरसाना जाना है, और अचानक आपकी मृत्यु हो जाती है तो अगले जन्म में आपको भगवान वृंदावन में प्रवेश देंगे। इतनी बड़ी शक्ति है उसके अंदर, केवल विचार के अंदर। आप पहुंचे भी नहीं अब तक, विचार कर रहे हैं कि मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू बरसाना। ये विचार करने से भी आपके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर आप यहां आ गए हैं तो कितनी शक्ति आप प्राप्त करेंगे। बार बार पाप नष्ट करने के बारे में मैं कह रहा हूं, लेकिन उसके बारे में मत सोचना आप, क्योंकि पाप नष्ट जो है ये एकदम शुद्र प्राप्ति यहां की है। इट्स अ बाय 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 प्रोडक्ट ऑफ द सत्संग वॉरियर। यहां के संघ की प्राप्ति, यहां का जो संघ का निवास की प्राप्ति जो है वो कई गुना श्रेष्ठ है। पाप तो पाप निवृत्ति उनको आकर्षित करते, जो बहुत पापी है वो जब अच्छा होगा चलो यहां पर पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन यहां पर केवल विचार करने से भी श्री कृष्ण का और राधारानी का संग प्राप्त होता है। ऐसी जगह है ये, इसलिए यहां पर बड़े सावधानी से रहना और पूरा लाभ लेकर यहां से लौटना। ये हमारी राधारानी के कृष्ण भगवान के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना होगी कि आप सब लोग यहां से पूरे गिले भीग कर राधा कृष्ण की भक्ति में और प्रेम में मुंबई लौटना, और मुंबई का निवास भी ब्रजवास बना देना, तब आपका सफल हो जाएगा। बोलो जय जय श्री राधे, श्याम श्री बरसाना धाम की, श्री लाडली लाल की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री प्रभुपाद की, गुरुदेव की, निताई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। समय हो चुका है इसलिए आज थोड़ा नहीं करेंगे, लेकिन